चर्चा का विषय है।
ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है लैंगिक संवेदनशीलता और महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के रहाटकर के साथ अनुभा रोहतगी की विशेष बातचीत।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। भारतीय संविधान ने पुरुषों और महिलाओं को समानता का दर्जा दिया है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन सच ये भी है कि आजादी के 8 दशक बाद भी आज भी हमारी सोसाइटी के कई तबके महिलाओं को पुरुषों से कम, उनसे इंफीरियर मानते हैं। और भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम योगदान देने के बावजूद महिलाओं को आज भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज और सोशल रिस्ट्रिक्शंस शामिल हैं। तो भारत की ऑलराउंड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जेंडर सेंसिटिविटी और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे इश्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है? इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, इन्हें बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या किया जा रहा है? इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। विजया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
विजया जी, आज जब भारत 2047 में एक विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में जेंडर सेंसिटिविटी और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर फोकस करना क्यों जरूरी है?
मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ प्रगति होनी है वहाँ वहाँ हमें ये देखना जरूरी होता है कि समाज महिलाओं को किस दृष्टि से देखता है। मुझे आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक वाक्य बहुत याद आ रहा है। उन्होंने ये कहा था कि मैं समाज की प्रगति को इस तरीके से आंकता और मापता हूँ जहाँ पे उस समाज में महिलाओं का स्थान कैसे है। अगर महिलाओं की प्रगति है सब तरह की, तो वो समाज सही में समृद्ध है। मुझे लगता है कि ये जो सेंटेंस है, ये हम सभी के लिए हमेशा हमेशा के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरत है। और उसी के साथ साथ हमें काम करने की भी इसी सेंटेंस के साथ चलने की जरूरत है। ये हम देखते हैं कि जब हमें अपने देश की प्रगति करनी है तो स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, तो ये समान तरीके से रथ के दोनों पहिए भी चलने की जरूरत है। अगर एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा तो वो रथ कैसे चलेगा? उसी तरीके से हमें स्त्री और पुरुष दोनों को सक्षम करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि पुरुष तो सक्षम है, पर आज भी ऐसे अनेक समाज की जगह है जहाँ पे महिलाओं को कम देखा जाता है, कम आंका जाता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो आपकी घर की आधार स्तंभ महिला है उसको आप आगे नहीं बढ़ाओगे तो प्रगति कैसे होगी? तो इसीलिए मुझे खुद को ये लगता है कि एक मानव के नाते भी हमने महिलाओं को बराबरी का अवसर तो देना ही है, पर अगर देश को आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, समाज को भी समृद्ध और सुसंस्कृत बनाना है, तो हमें महिलाओं को बराबरी का साथ देना ही होगा।
विजय जी, जैसा भी आपने कहा कि समाज के अभी भी कई ऐसे तबके हैं जहां महिलाओं को कम आंका जाता है, तो ये जो जेंडर बायस हमें आज भी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, आप इसके रूट कॉजेस को क्या मानती हैं? और साथ ही आज भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं वो भी पूरी तरह से हम देखते नहीं है उसके नतीजे, तो इसके रोड ब्लॉक्स क्या है?
कि हमारे समाज में समाज जेंडर बायस तो है ही, आज भी हर्डल्स क्या है हमारे, तो हम ये समझते हैं कि पुरुष महिलाओं से बहुत सुपीरियर है, पहले एक बात ये है। दूसरी बात, महिलाओं को बहुत कुछ समझता नहीं है, तो ठीक है वो घर संभाले। आज भी अनेक जगह पे यही मानसिकता है, अब उसको बहुत कुछ समझता नहीं है तो उसका काम ही घर संभालना है। अगर इस भावना के साथ आप चल रहे हैं तो बेटियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। बेटियों को पढ़ाते हैं, पर पढ़ाते कब तक है? उसकी शादी अच्छी घर पे होने के लिए, वहां तक ही पढ़ाते हैं। आज हम ये भी देखते हैं कि समाज ये सोचता है कि बेटा है तो इंजीनियर बने और बेटी है तो करे बीए करे, कुछ इसी भावना के साथ चल रहा है। फिर अच्छे अवसर नहीं मिलते, नए अवसर नहीं मिलते, उनके ऊपर विश्वास नहीं जताया जाता है, जो निर्णय प्रक्रिया होती है उस निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा वो नहीं बनती है। ऐसे अनेक चीजें हैं, पर इससे सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है, कितनी बार समाज के लोगों की, पुरुषों की ये मानसिकता होती है स्त्री तो उपभोग की वस्तु है, और यही मानसिकता हमें बहुत पीछा करती है। बहुत ही, वो केवल उस घर को नहीं पीछा करती है तो समाज को, देश को पीछा कर देती है। तो इसीलिए हमें इन सभी विषयों पर प्रहार करने की बहुत जरूरत है। वो आपकी उपभोग की वस्तु नहीं है, वो अपने मन से, अपने विचार से चल सकती है, वो बराबरी के साथ चल सकती है। ये विचार हमें बार बार बताना पड़ता है, जताना पड़ता है, और वही विचार समाज लेके जाए इसके लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ता है।
जब हम प्रयास की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग होती है वो उसके घर से शुरू होती है, उसका घर जो होता है उसका पहला स्कूल होता है। तो जब आपने प्रयास की बात की तो जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चों में और खासकर लड़कों में जेंडर सेंसिटिविटी को डेवलप करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं?
सेंसिटिविटी अगर आपके बचपन से ही शुरू हो जाती है तो फिर वो लड़का हो या लड़की दोनों बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं। हम कितनी बार घर पे ये देखते हैं, काम में लगा देते हैं।
बिल्कुल,
उनको काम सिखाना कोई गलत नहीं है, पर जैसे बेटी को आप काम सिखा रहे हैं वैसे आप बेटे को भी तो सिखाओ। अगर बेटी माँ को घर में मदद कर रही है और वो सब्जी काट के दे रही है तो कपड़ा सुखाने के लिए आप बेटे को तो बोल सकते हैं ना।
बिल्कुल,
तो जब आप उस तरीके से दोनों को बढ़ावा देंगे और दोनों का एक दूसरे के साथ सम्मान करने की बात करेंगे कि भाई ने बहन का सम्मान करना है और बहन ने भाई का करना है, जब ये बातें आपके व्यवहार में खुद के माँ और पिता के व्यवहार में आएगी तभी वो बात अच्छी चलेगी। नहीं तो घर के लोग बेटी को कहते हैं कि जल्दी घर पे आ जा, शाम हो गई है। ये बात भी ठीक है कि आप कह रहे जल्दी आ जाना, माने चिंता लगती है इसलिए बताना, ये बात अलग है, पर वही चिंता बेटे के लिए भी होनी चाहिए ना
बिल्कुल,
कि आप भी जल्दी घर पे आओ, हम आपका खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो बेटी को आप डांटोगे और बेटे को नहीं, ये कैसे चलेगा? ऐसे अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं रोज के व्यवहार में जहाँ पे आपने दोनों को बराबरी के साथ बढ़ाना है, तभी तो वो जेंडर सेंसिटिविटी उनके जीवन में उसका वो अंगीकार करेंगे।
विजया जी, जब घर से निकलकर बच्चे आगे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और उसके बाद फिर काम करना शुरू करते हैं, तो जो बचपन में एक सीख मिली होती है उसको आगे बढ़ाने की भी जरूरत है। तो ऐसे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वर्क प्लेसेस में जेंडर सेंसिटिविटी को डेवलप करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, वहां एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और कैसे किया जा सकता है?
हर ऑफिस एक सेफ वर्किंग प्लेस बनाने के लिए और जेंडर सेंसिटिव भी बनाने के लिए प्रयास कर सकता है। हर ऑफिस में सबसे पहले क्या देखने की जरूरत है, पुरुष हो या महिला हो, उन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, पहले ये सुनिश्चित करना है। और उसी के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि उन दोनों को समान सम्मान भी मिले। अगर इन दो विषयों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हम सब चीजों को हम कवर कर लेते हैं। तो ऑफिस में समान अवसर समान सम्मान की बात करें, वो ठीक से चल रहा है ना, इसको भी देखें। और उसी के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए पॉश एक्ट जो है
जी,
उसका प्रभावी अमल भी करें। आप सभी को तो पता है कि पॉश एक्ट जो है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके सर पर पकड़ी हुई एक बहुत अच्छी छाता है जो उनका संरक्षण करती है। इस एक्ट के बारे में ऑफिस के सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, केवल महिला को नहीं, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी, दोनों को भी इस एक्ट के बारे में जानकारी अच्छी होनी चाहिए। और इस जानकारी को साथ लेते हुए अगर आपके ऑफिस में कोई गलत घटना भी घट जाती है तो आपके ऑफिस में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि पीड़ित महिला को ऑफिस के बारे में, वहाँ की जो आईसी है उसके बारे में विश्वास लगे, उनके पास जाके वो बात कर सके। और इतना ही नहीं, ऑफिस का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे अच्छे कमरे है, खुली जगह है, जहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए है, जहाँ पे अच्छी लाइट लगी हुई है, और जहाँ पे अगर कोई पीड़ित महिला को आईसी के साथ बात करनी है तो उस आईसी के बारे में उसके मन में विश्वास पहले होना चाहिए।
फिजिकल एनवायरनमेंट भी अच्छा होना उतना ही जरूरी है।
तो इन सभी चीजों को हमें सुनिश्चित करने की बहुत जरूरत है।
विजय जी, आपने हमें पॉश के बारे में बताया, इसके अलावा भी इंडिपेंडेंस से आज तक जो महिलाओं से संबंधित कौन से वो महत्वपूर्ण कानून है, कौन सी नीतियां हैं जिनको महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है?
मैं आपको एक बात जरूर कहूंगी, हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा का बहुत ख्याल रखा गया है। और ये ख्याल कैसे रखा गया है, तो महिला सम्मान और सुरक्षा के अनेक अनेक कानून हमारे देश में है। ये कानून तो बहुत अच्छे है पर इसका बहुत अच्छा प्रभावी अमल भी हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ हमारे देश में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके बारे में। अगर कोई महिला को घर में तकलीफ हो रही है, उसको उसका छलावा हो रहा है, उसको घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, या इस तरीके से अनेक घटनाएं घटती है, तो इससे बचने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक बहुत अच्छा एक्ट है जिसके बारे में हर महिला को जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जो एक्ट है जिसके बारे में मैंने पहले ही बात करी है, वो है पॉश एक्ट, कि आपके कामकाजी क्षेत्र में,
वर्कप्लेस में,
हाँ, वर्कप्लेस पे महिलाओं को सुरक्षितता मिलने के लिए ये कानून बनाया गया है जिसका बहुत प्रभावी अमल होने की और भी जरूरत है। अभी हो रहा है पर और अच्छे तरीके से काम होने की जरूरत है। दूसरा एक्ट ये है। तीसरा जो एक्ट है हमारे देश में, वो मैं कहूंगी कि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनें रहती है, उनके सर के ऊपर हमेशा ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहती है। आज उन महिलाओं को राहत मिल गई है ट्रिपल तलाक का जो कानून आया है उसी के माध्यम से। और एक मैं कानून के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हमारे यहाँ अभी जो मैटरनिटी बेनिफिट लीव अभी मिल रही है, नया एक्ट आया है और आज कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम ये एक्ट कर रहा है। ये मैटरनिटी बेनिफिट लीव तो आपको मिलती भी है, पर उसी के साथ साथ बच्चों की देखभाल के लिए सीसीएल भी मिलती है। ऐसे अनेक प्रावधान हमारे देश में महिलाओं के लिए किए गए हैं। शक्तिवंदन कानून अब आ गया है। अब ये शक्तिवंदन कानून महिलाओं को स्ट्रांग बनाने के लिए, उनको बराबरी का स्थान देने में और निर्णय प्रक्रिया में स्थान देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इसी के साथ साथ अभी हमारे देश में 4 श्रम संहिता आई है,
बिल्कुल लेबर कोड
जो आए हैं, तो इस लेबर कोड के माध्यम से भी महिलाओं को अनेक अनेक अधिकार मिल गए हैं। जैसे अभी महिलाएं नाइट शिफ्ट कर सकती है, इसके समय पे जब नाइट शिफ्ट उनकी चल रही है तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सौंपी गई है। ऐसे अनेक अनेक नए बदलाव इस एक्ट में हम लेकर आए हैं। इसके अलावा तो दहेज निषेध एक्ट है, उसी के साथ साथ हमारे देश में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून है। ऐसे अनेक कानून महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं।
विजय जी, जो अभी हाल ही में भारतीय आचार संहिता जो एक नई आई है, उसमें महिलाओं को लेकर किस तरह के कदम उठाए गए हैं, क्या उसमें प्रावधान है जो महिलाओं के पक्ष में है?
भारतीय न्याय संहिता अभी हमारे देश में नए तरीके से बन गई है। इसके पहले जो हमारे एक्ट होते थे
जी,
या हमारी जो पूरी प्रोसीडिंग जो होती थी, वो सभी ब्रिटिश कालीन एक्ट थे जिसको लेकर हम अभी तक चल रहे थे, तो हमें अपने हिसाब से भी चलना बहुत जरूरी था। तो इसलिए हमने अभी 3 जो BNS एक्ट आए हैं उसी को लेकर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे इसके पहले भी महिलाओं के लिए जो IPC CRPC में जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों को हमने अभी और मजबूत किया है। मुझे ये लगता है कि BNS के माध्यम से हमारी महिलाएं अभी और सशक्त हो गई है।
विजय जी, आज की जो हमारी जिंदगी है उसमें डिजिटल एरा में टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का जितना तेजी से विकास हो रहा है, इन दोनों एस्पेक्ट्स ने महिलाओं से जो जुड़े मुद्दे हैं उनको कैसे इम्पैक्ट किया है? मतलब जैसे अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो डिजिटल जेंडर डिवाइड है या डिस्पैरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, ऑनलाइन हैरेसमेंट जैसी जो समस्याएं हैं, उनसे कैसे डील किया जा रहा है?
एक एक करके एक एक चीजें हमारे पास आई, फोन आया, मोबाइल आया, इंटरनेट आया, हम चलते गए आगे। आज हम देख रहे हैं कि आज AI का जमाना है,
बिल्कुल,
और AI एकदम हमारे दरवाजे पे आ चुका है। अब हम ये नहीं कह सकते कि मुझे वो चाहिए नहीं चाहिए, आपके साथ वो खड़ा है,
चाहिए नहीं चाहिए वो सच्चाई है।
अब वो रह ही नहीं गया, अब तो वो आ गया है और उसका हमें अच्छा सा उपयोग करना है। तो ऐसे समय पे मैं ये कहूंगी कि जो डिजिटल लिटरेसी बहुत महत्वपूर्ण होती है, AI का ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो हमें आगे लेके चलता है। मैं 2 चीजों के लिए बात करूंगी कि AI का अगर अच्छा इम्पैक्ट हमें देखना है तो AI का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है कि आपके करियर में आप AI का या डिजिटल लिटरेसी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने करियर में, अपने काम में बहुत जल्दी आगे चले जाते हैं और आपका करियर अच्छा बनता है। तो ये पॉजिटिव उपयोग है, पर हम ये भी देखते हैं कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी आता है,
बिल्कुल।
और आज हम देखते हैं कि चाहे डीप फेक हो, मॉर्फिंग हो, ऐसी अनेक घटनाएं, डिजिटल अरेस्ट हो या फाइनेंशियल फ्रॉड हो, ये हम बहुत चीजें देखते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत तकलीफ होती है, तो इससे भी हमें बचकर रहने की जरूरत होती है। मुझे ये लगता है कि डिजिटल लिटरेसी हमें अच्छी तरीके से है, AI का पॉजिटिव उपयोग हम करना जानते हैं, तो अपने आप में जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसका, उससे भी कैसे बचना है ये हम समझ सकते हैं, हमें वो जानकारी होती है। इसीलिए डूज और डोंट के बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उसको हमने अपने जीवन में अच्छा उपयोग भी करने की जरूरत है।
विजय जी, मैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करूंगी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों टूल्स आयोग अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर रहा है?
डिजिटलाइजेशन का बहुत अच्छा उपयोग हमारे ऑफिस में हम कर रहे हैं। महिलाओं के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को सुलझने के लिए भी हम उसका काफी अच्छा उपयोग भी कर रहे हैं। आज हमारे ऑफिस में हमारा जो कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सेल है, वहाँ पे जो कंप्लेंट्स आती है, वो पूरी कंप्लेंट्स हम आज बहुत अच्छे तरीके से सुलझाते हैं AI के माध्यम से। हमने काफी अच्छा उपयोग किया है और आज हमारा जो MIS है वो बहुत अच्छे तरीके से बना है, ताकि उसी के माध्यम से हम तुरंत सब चीजें, चाहे कंप्लेन को रजिस्टर करवाना हो, चाहे पुलिस को खत लिखना हो, या पुलिस से जो हमें ATR लेने होते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो लेना हो, उसके ऊपर तुरंत एक्शन करना हो, ये सब चीजें हम AI का और बाकी चीजों का उपयोग करते हुए हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम और भी अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने ये तय किया है कि हमारी देश की महिलाएं ये AI साक्षर होनी चाहिए, महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी का ज्ञान देते हैं, AI का पॉजिटिव उपयोग अपने जीवन में आप किस तरीके से कर सकते हैं ये हम उनको बताते हैं। अभी तक हमने अनेक अनेक क्षेत्र की महिलाओं का ट्रेनिंग इस विषय के लिए हमने किया है। मानो जैसे हमने अभी बीच में एक ट्रेनिंग किया था देहरादून में, हमने किया था कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो डॉक्टर्स है और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो AI का पॉजिटिव उपयोग अपने क्षेत्र में, अपने करियर में कैसे कर सकते हैं। हमारी जो महिला उद्यमी बहने हैं
जी,
वो महिला उद्यमी एआई का उपयोग अपने जीवन में कैसे कर सकती है। हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जो आज लखपति दीदी बन गई है, ये लखपति दीदी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग कैसे कर सकती है, किस तरीके से वो कंटेंट क्रिएट कर सकती है, किस तरीके से वो क्रिएटिव्स बना लेती है, किस तरीके से एआई का उपयोग करते हुए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाती है, ऐसी अनेक चीजें हमने उनको सिखाई। तो मैं देख रही हूँ कि एआई का उपयोग करते हुए हमारे देश की महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। बात केवल इतनी नहीं है
जी,
हमने अपनी जो आशा और आंगनबाड़ी बहने हैं
जी,
इनका भी हमने एआई का एक ट्रेनिंग किया। आपको तो पता है कि बहुत बड़ा डेटा भी वो कलेक्ट करती
बिल्कुल
है, तो अगर वो डेटा कलेक्ट करने में वो एआई का उपयोग करती है तो अपना काम काफी अच्छे तरीके से कर पाती है, जल्दी कर पाती है। हमने उनको भी वो उपयोग कैसे करना है ये सिखाया है। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि जब हम एआई का उपयोग अच्छे तरीके से जानते हैं तो हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव भी आता है। उसके साथ चलने के लिए अभी हमने अपने नए पीढ़ी को तैयार करना होता है।
यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो डिजिटलाइजेशन का, और जो हम अभी बात कर रहे थे कि जेंडर डिजिटल डिवाइड की हम जो बात करते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से उस इशू को एड्रेस कर रहा है। तो कानूनों की जानकारी होना एक बात है, पर उसके साथ साथ सिर्फ जानकारी होना जरूरी नहीं है, उसको किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जागरूकता होना भी उतना ही जरूरी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल, जागरूकता निर्माण होना तो बहुत जरूरी है। जब तक कानूनी जागरूक नहीं होते हैं तब तक आपके हक आप समझ नहीं पाते हैं
जी,
खुद की रक्षा कैसे करनी ये आप समझ नहीं पाते हैं, आपके अधिकार क्या है ये आप समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए कानून बहुत अच्छे बने हैं, कानून का प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है जो हो रहा है, पर उसी के साथ साथ इसके बारे में जागरूकता निर्माण करना बहुत ही जरूरी है। मुझे याद है एक प्रसंग
जी,
अभी तो सरकार की अनेक अनेक हेल्पलाइन चलती है,
बिल्कुल
हम 181 की बात करते हैं, हमारे कमीशन का 24/7 चलने वाली हमारी हेल्पलाइन है, नंबर है 144-90। यहाँ पे 24 घंटे भी आप बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और आपकी अड़चन बताते हुए आप कोई रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। ऐसे अनेक अनेक प्रयास
बिल्कुल
गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं। कितनी बेटियां मिलती है कॉलेज में, जब मैं जाती हूँ और उनके साथ बात करती हूँ तो मैं उनको पूछती हूँ कि फिर अगर कोई कुछ तकलीफ हुई, कभी डर लगा, कभी कोई पीछा कर रहा है तो आप क्या करते हैं, तो हंसते हुए उन्होंने बहुत कहा कि अब हम डरते वरते नहीं है, हम तो सीधा 181 मिलाते हैं। आप देखिए, एक आपको हेल्पलाइन के बारे में पता है
जी,
वो हेल्पलाइन आपको मदद करती है, ये आपको पता है, आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता
बिल्कुल।
है। वो लड़की कहती है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं, मेरे मदद के लिए 181 है, मेरे मदद के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत जरूरी है, और इस तरीके से ये कॉन्फिडेंस अभी बिल्ड भी हो रहा है। तो केवल बात हेल्पलाइन की नहीं, इसी तरीके से कानून है, आपके अधिकार है, तो आप इसको समझते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप फिर डरते नहीं है, आपको भी तकलीफ नहीं होती है। मुझे और एक प्रसंग आपको बताना है। एक बार एक लड़की मुझे बता रही थी कि ट्यूशन करके रात में वो घर पे जा रही थी, रास्ते पे दो चार लड़के खड़े थे जो उसके बारे में कुछ बातें कर रहे थे, कुछ उसको इशारे कर रहे थे, गाने गा रहे थे जिससे वो लड़की असहज हो जाए। तो मैंने उसको पूछा कि फिर आगे क्या हुआ, बोले क्या होना, मेरे पास ऐप था, ऐप के माध्यम से मैंने तुरंत बता दिया, पुलिस की गाड़ी आ गई,
क्या बात,
और मैं नहीं भागी, भागना तो उन लड़कों को पड़ा। तो जो कॉन्फिडेंस इससे जो बिल्ड होता है, तो इसीलिए कानूनी जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, अपने अधिकारों को समझने के लिए और आपके लिए क्या क्या चीजें बनाई है ये पता होने के बाद जो कॉन्फिडेंस आप में आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि आप कॉन्फिडेंस की बात कर रही हैं, आप जागरूकता की बात कर रही हैं, और आपने जो दोनों प्रसंग बताए, जो दोनों इंस्टेंसेस बताए, यंग जनरेशन के हैं, तो आज की जो यंग जनरेशन है सोशल मीडिया उसके लिए सब कुछ है, सब जगह सोशल मीडिया पे यंग जनरेशन बहुत ज्यादा इंट्रिकेटली उसके साथ इन्वॉल्व है, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का काम आगे बढ़ाने में, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने में सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है?
सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल। मैं आपको एक बात कहूंगी कि जैसे एआई हमारे लिए वरदान है, अगर अच्छा उपयोग करते हैं तो बहुत ही शानदार है, वैसे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से आज दुनिया तो बहुत पास में आ गई, तो सोशल मीडिया से नॉलेज की आदान प्रदान होती है, अनेक चीजें एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं, पर उसी के साथ साथ सोशल मीडिया में हमने, मैं ये कहूंगी कि बहुत फिर से समझदारी के साथ चलने की जरूरत। सोशल मीडिया पे आप सभी चीज शेयर करने लगे तो उसकी तकलीफ आपको होनी है, पर सोशल मीडिया का उपयोग एक अच्छे टूल के रूप में अगर आप करते हैं तो आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो समझदारी के साथ हमें चलने की बहुत जरूरी है, और सोशल मीडिया का उपयोग करते समय आपने फिर डूज और डोंट की बात है
जी,
क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको भी समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है।
हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं विजया जी, तो अक्सर एम्पावरमेंट को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ लोग जोड़ देते हैं, ज्यादातर उसको सिनोनिमस माना जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए, उनको ज्यादा सशक्त बनाने के लिए सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितनी जरूरी है?
बहुत जरूरी है, आगे बढ़ने। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत महत्वपूर्ण है
जी,
और उसी के साथ साथ उसका सोशल एम्पावरमेंट और उनका सामाजिक सम्मान भी तो बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल।
और ये सामाजिक सम्मान में आपको एक बात कहूंगी कि ऐसा नहीं आता, उसके लिए सरकार को भी अनेक नीतियां अपनानी पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ
जी।
हमारे यहाँ अभी आपने उल्लेख किया कि अभी 8 दशक स्वतंत्रता के बाद उलट गए हैं, तो अभी 1 दशक से जो बदलाव आया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आजादी के बाद हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं चूल्हे के ऊपर अपना खाना बनाती थी।
बिल्कुल।
और वही धुएं के साथ चलती थी, जिसकी वजह से उनका शरीर तो खराब होता था, उनकी हेल्थ खराब होती थी, तकलीफ भी बहुत होती। लाभ आया, उज्ज्वला योजना आई, आज हमारे घर में हर एक के घर में गैस का चूल्हा है, गैस के ऊपर हम खाना बनाते हैं। जब सरकार ने सम्मान देना शुरू किया तभी उन महिलाओं को सामाजिक सम्मान मिला। जब सरकार ने ये देखा कि उन महिलाओं को तकलीफ है तो उनको सम्मान देना हमारा काम बनता है
जी,
और फिर हम आगे बढ़े। तो इसी तरीके से समाज को भी वो सम्मान देना होता है। पर मैं ये कहूंगी कि सामाजिक सम्मान के साथ साथ आगे बढ़ने का भी सम्मान मिलने की बहुत जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि जब 73rd 74th अमेंडमेंट आ गई और उसके बाद हमारी महिलाएं राजनीति में आई, जो पंचायत लेवल पे आज 50% से अधिक ज्यादा महिलाएं वहां पे राजनीति कर रही है, काम कर रही है, हर जगह पे वो दिखती है और बहुत शानदार काम कर रही है। और उसी क्रम में अब हमारे यहाँ शक्तिवंदन कानून भी आ गया जो महिलाओं को 33% आरक्षण देगा विधानसभा और लोकसभा में, तो उससे भी हम बहुत सक्षम हो रहे हैं। बात आपने कही कि फाइनेंशियल जो उनका एम्पावरमेंट बहुत आवश्यक है, पर एक और एग्जांपल देती हूँ। कोई महिला है, घर भी मिल गई, कमा रही है, और उसके घर में वो कमा रही है, पैसा भी घर में पति को या घर के लोगों को लाके दे रही है, पर उसको ये भी हक नहीं है कि उसका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़े
जी।
तो फिर वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का कोई अर्थ नहीं बनता है।
बिल्कुल।
ये तीनों चीजें सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, पर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत महत्वपूर्ण भी है, ये भी तो बहुत बड़ी
कदम है,
पहला कदम है। इन तीनों को साथ में लेकर ही हमें चलने की जरूरत है, तभी वो महिला परिपूर्ण हो सकती है।
आपने कहा कि महिलाएं आज पढ़ लिख रही हैं, अपने वर्क प्लेस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पर उसके बावजूद उनको अपने घरों के अंदर, चाहे अपने माता पिता के साथ हो, चाहे अपने हस्बैंड के साथ हो, छोटे छोटे उनको जो फैसले करने होते हैं उनको उसका अधिकार नहीं होता। तो इसका एक मेंटल एस्पेक्ट भी है कि उनकी जो मानसिकता है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव आगे जाकर देश की जो डेवलपमेंट है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब आप खुद ही हीन अपने आप को महसूस करेंगे तो उसका आपका नतीजा कहीं ना कहीं आपके काम में, आपके रोजमर्रा के आपके बिहेवियर में जरूर नजर आएगा।
आप सही कह रहे हैं, इसलिए तो जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ती है कि बचपन से ही वो खुद को एम्पावर्ड महसूस करें, उसको बराबरी का स्थान मिले। जब हमें आगे हर एक पेरेंट ये देखने की जरूरत है कि आपको केवल अपने बच्चों को बड़ा बना के उनको केवल अच्छा पढ़ाने के बाद अच्छी नौकरी की जरूरत है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आगे चल के मेरा बच्चा, वो लड़का हो या लड़की हो, मेरी लड़की भी इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान देने वाली है, और उस योगदान को ध्यान में रखते हुए मुझे उनको बराबरी का स्थान देना है। हमें ये हर जगह पे सोचने की जरूरत है, बचपन से लेके आगे चलने तक
जी।
माता पिता ने सोचने की जरूरत है, स्कूल में जब जाते हैं तब टीचर्स ने सोचने की जरूरत है, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो समाज ने भी उनके लिए ये सोचने की जरूरत है, और खुद उन्होंने भी अपने लिए ये सोचने की जरूरत है। तभी तो देश को आगे बढ़ाने के लिए देश की बेटियां एक बहुत अच्छा योगदान दे सकती है। ये योगदान देने के लिए हमने उनको बहुत पहले से एम्पावर करने की जरूरत है।
आपने भी कुछ देर पहले हम जब इस कार्यक्रम में बताया कि किस तरह नेशनल कमीशन फॉर वुमेन AI का इस्तेमाल कर रहा है, इसके अलावा भी क्या आप हमारे साथ कुछ और जो आपके महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स हैं आयोग के, उनको हमको शेयर कर सकती हैं जिसका वुमेन एम्पावरमेंट पे और जेंडर सेंसिटिविटी पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है?
नेशनल वुमेन कमीशन ऐसे अनेक अनेक प्रयास कर रहा है। हम जब बात करते हैं कि हमारी यंग पीढ़ी जो है, जो यंग जनरेशन है, ये हमारा भारत का भविष्य है
जी,
तो ये यंग जनरेशन को अच्छे तरीके से तैयार करना हमारा ही काम बनता है। इनको हमें जेंडर सेंसिटिव बनाना है, जेंडर रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो इसीलिए हम जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के जो बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की
जी,
इनके लिए हम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम है कैंपस कॉलिंग। कैंपस कॉलिंग में आप जिम्मेदार कैसे बन सकते हैं, आपने साइबर क्राइम से कैसे बचना है, पॉश के बारे में हम उनको बताते हैं, उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, पॉक्सो जो एक्ट है
जी,
उसके
जी,
बारे में, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है,
बिल्कुल
छोटे बच्चों को आरक्षण करने वाला, इन सभी के बारे में जानकारी हम कैंपस कॉलिंग में देते हैं। आज कैंपस कॉलिंग ये हमारा बहुत पॉपुलर कार्यक्रम है, और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, गत साल भर में हम पूरे देश भर में कैंपस कॉलिंग के लगभग 700 प्रोग्राम नेशनल वुमेन कमीशन कर चुका है केवल 8-10 महीने में। तो कैंपस कॉलिंग बहुत अच्छा चल रहा है। इसी के साथ साथ हमारा एक कार्यक्रम है जो जनसुनवाई है। हमारे पास पूरे देश भर में महिलाएं ये वो ये चाहती है कि नेशनल वुमेन कमीशन उनको राहत दे दे,
बिल्कुल,
पर ये महिलाएं खुद अपने क्षेत्र से हमारे तक आ नहीं पाती है। फिर हमने ये सोचा कि हम ही खुद उनके द्वार पे जाएंगे और हमने फिर राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार नाम की एक जनसुनवाई शुरू करी जो उनके गांव में जाते हुए हम करते हैं। साथ में पूरा प्रशासन होता है यानी कि पुलिस होते हैं, कलेक्टर होते हैं, सभी साथ में बैठते हैं और तुरंत हम वहीं पे उस महिला को न्याय देने की भूमिका में काम करते हैं, तुरंत उन महिलाओं को न्याय भी मिलता है। तो ये एक हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसको महिलाओं को न्याय देने की भूमिका में हम अच्छा काम कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हमारा यशोदा आय के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, पर वैसे ही हमारे कार्यक्रम है उसका नाम है शी द चेंज मेकर, जो हमारी पंचायत से चुनी हुई जनप्रतिनिधि है
जी।
उनका काफी अच्छा ट्रेनिंग हम शी द चेंज मेकर में करते हैं ताकि वो जनप्रतिनिधि अपने गांव के विकास करने के लिए सक्षम हो जाए। ये महिला जनप्रतिनिधि है और आज मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने अभी तक 20,000 से अधिक ज्यादा महिला जनप्रतिनिधियों का हमने ट्रेनिंग किया है। इसी के साथ साथ अन्य जो कार्यक्रम है उसमें कैटलिस्ट फॉर चेंज नाम का एक कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में हम जो कलेक्टर्स और SP और CP जो होते हैं इनका हम 3 दिन का ट्रेनिंग करते हैं। इस ट्रेनिंग में हम उनको अधिक ज्यादा जिम्मेदार भी बनाते हैं, महिला कानून की भी तो हम बात करते हैं, पर उन्होंने एक अलग नजर से महिलाओं के प्रश्नों की तरफ देखना है, एक नई दृष्टि भी उनको वहां पे प्रदान की जाती है। और इसके साथ साथ हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है जिसका नाम है तेरे मेरे सपने।
तेरे मेरे सपने,
हाँ
जी,
तेरे मेरे सपने ये प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है। यहाँ पे इस सेंटर में जो अभी शादी के सम्मुख जाने वाला
जी, जी,
लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों आके वहाँ पे मिलके बात कर सकते हैं, अलग अलग भी आके वहाँ पे बात कर सकते हैं, इवन दो उनके जो फैमिलीज है वो भी वहाँ पे आके बात कर सकते हैं और शादी के बारे में अपने समझ को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ऐसे अनेक अनेक इनिशिएटिव आज राष्ट्रीय महिला आयोग कर रहा है।
प्राइवेट सेक्टर में भी, क्योंकि हमारे देश का एक काफी बड़ा परसेंटेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करता है, तो सरकारी इनिशिएटिव्स में, सरकारी ऑफिसर्स में जैसे आपने बताया SPs हैं, ग्राम पंचायत हैं, उनसे जुड़े इनिशिएटिव्स हैं, बट राष्ट्रीय महिला आयोग प्राइवेट सेक्टर में किस तरह के काम कर रहा है या यही इनिशिएटिव्स वहां पर भी चल रहे हैं?
जी, प्राइवेट सेक्टर में तो हम वहां पर भी हम काम कर रहे हैं
जी।
विशेष रूप से हम बहुत बड़ा काम पॉश में कर रहे हैं। पॉश में हम ये प्रयास करते हैं कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर है वहां पे ISC स्थापित हो, वहाँ की महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिले और महिलाएं वो अच्छे तरीके से आगे बढ़े। और उसी के साथ साथ जो लेबर कोड आए हैं उसके बारे में भी हम प्राइवेट सेक्टर में बात कर रहे हैं और उनको इसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं और महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए वो ऑफिस काम करे ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं।
आखिरी सवाल, मैं फिर उसी पर आऊंगी जो मेरा पहला सवाल था, अगले 20 साल में भारत जब एक विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है, महिला सशक्तिकरण और जेंडर सेंसिटिविटी, इन दो इश्यूज पर आपका क्या विजन है, आपकी क्या सोच है कि हमारा भारत अगले 20 साल में कहाँ होना चाहिए, कहाँ होगा?
अभी हमारा ये अमृत काल चल रहा है
जी।
और इस अमृत काल के लिए हमने भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए अनेक विषयों पर हमने सोचा है
जी।
पर इसका सबसे बड़ा हिस्सा देश की महिलाएं है। आज भारत चाह रहा है कि देश के हर क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़े और इसलिए मैं एक बात आपको जरूर कहूंगी
जी,
अगर हमारे देश को आंकना है हम कहाँ खड़े हैं, तो हम जब स्टेम की बात करते हैं
जी,
साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की,
yes,
तो विश्व के पटल पर भारत नंबर वन है जहाँ पे सबसे बड़े नंबर में देश की बेटियां पढ़ रही है और आगे जा रही है। आज उन्हीं बेटियों के हाथ में कल का भारत है,
बिल्कुल
उसका भारत का भविष्य उन्हीं बेटी और बेटियों के हाथ में है, तो इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत की हमारी बेटियां जो पायलट है विश्व में नंबर वन है
जी,
संख्या में हम इन सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बेटियों को बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। मैं देख रही हूँ कि हमारा अमृत काल का जो भारत है
जी,
उस भारत को बनाने में देश की बेटियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेटियों को बहुत अवसर भी मिल रहे हैं।
विजया किशोर राहतकर जी, आप हमारे साथ जुड़ी और जेंडर सेंसिटिविटी और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज पर हमारे साथ अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे लैंगिक संवेदनशीलता और महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के रहाटकर के साथ अनुभा रोहतकी की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है।